ये पकड़ लिया पकड़ लिया, अरे छोड़ो 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 छोड़ो, मैं नहीं छोड़ती, छोड़ता क्यों? आप मुझे दर्शन दोनों का, अच्छा ठीक है तब छोड़ेगा, तहाँ छोड़ दे। बस दोनों सामने थे, उनके हस्ती पर हाथ रखा, उनके नेत्र जैसे आए और अप्राकृत रूप को उन्होंने दर्शन, तभी नहीं छोड़ रहा, बस देख रहा है। मैंने कहा अब तो छोड़ेगा, छोड़ो तो नहीं, जिस रूप को मैंने देखा अब उसके अतिरिक्त मैं दूसरा रूप नहीं देखना चाहता, इसलिए मुझे जैसे के पहले जैसे जैसे था अंधा वैसा ही पड़ा। अब उसकी ऐसी इच्छा, जिस आंखों ने उनका रूप देखा, जिन कानों ने उनका शब्द सुना, जिन हाथों ने उनके कोमल स्पर्श किए और जिनकी सुगंध नाक ने ग्रहण किया, अब वो दूसरे कोई चीज को स्पर्श नहीं करना चाहते, यही कृष्ण की खूबी है। और अपने आप ये ध्यान होता, गोपियों का ध्यान कृष्ण का कैसे होता था? सहज स्वाभाविक समाधि भी उसी को कहते हैं सहज समाधि, स्वाभाविक में होना चाहिए। तो ये कैसे हैं? तहा तरंग बिंदु, ये कृष्ण का ये रूप शब्द स्पर्श इत्यादि, अमृत का सिंधु, अथा अपार अनंत
अतल
अतल, ये एक समुद्र है, उसका एक बिंदु इस सारे ब्रह्मांड को डुबा सकता है, ऐसी क्षमता उस बिंदु में है। आप इधर में हिमालय पहाड़ क्या है? त्रिजगत है जटो नहीं, यहां पर गोपियों का, गोपियां जी जो हैं उनका चित्त उच्च गिरी के समान, पर्वत के समान, उनका पातिव्रत धर्म हिमालय से भी ऊंचा, उनका व्रत जो है ये टल नहीं सकता अतल, अथाह और अनंत है, जगत का जितना भी पानी मिलकर के उसको पर्वत को नहीं डुबा सकता। कृष्ण को छोड़ करके नारायण का रूप भी गोपियों को कुछ नहीं करता, नारायण के रूप में कृष्ण बैठ गए, बंसी जरा हटा दी और गोपियां जा रही हैं, कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया, कोई मतलब नहीं, चलिए बल्कि उनसे पूछ लेंगे जे इधर कृष्ण को दे, हमारे प्यारे कृष्ण को देखा, मतलब नहीं है किसी से। जब नारायण का रूप ही उनको कुछ नहीं कर सकता तो और किसका रूप कर सकता है, इसलिए कृष्ण का एक बार जो रूप की झलक पा लेता है वो जगत में किसी भी अनित्य वस्तु का ध्यान चिंतन और अपनी इंद्रियों को उसमें नहीं लगाएगा, इसी कोई एक बिंदु एक झलक कृष्ण का दर्शन, उनके सुगंध अंग के सुगंध का एक इतना छोटा भी अटम भी ये जगत को एकदम डुबा देगा, एक बिंदु जगत डुबाए। इधर में है पर्वत, गोपियों का मान, गोपियों का धैर्य, गोपियों का पातिव्रत धर्म, उनकी लोक लज्जा, पूजनियों के प्रति श्रद्धा, ये हिमालय की तरफ है अटल है। कृष्ण द्वारकाधीश होकर के यदि आए, चार भुजा वाले दो ही भुजा वाले रहे और कहें जो मैं वसुदेव का पुत्र हूं, यदि वो कहें जो रुक्मिणी का पुत्र हूं,
रुक्मिणी पुत्र
पति, और रोहिणी का नहीं उनका देवकी का पुत्र हूं, गोपी का उनसे कोई भी संबंध नहीं, जब देखेंगे सिर पर
नव किशोर नटव और गोप वेश बने,
सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में
उठो
पत्थरों पर बंसी है, और नंद नंदन के रूप में ग्वाल के रूप में है, नव किशोर नटवर रूप में है, तब तो इनका इनसे संबंध है। तो यहाँ कह रहे हैं जितने भी ये गोपियां हैं उनका चित्त कैसा है? उच्च गिरी, हिमालय से भी ऊंचा, वो किसी भी दूसरे पुरुष को देख करके उनका चित्त कुबजा को नायिका के रूप में लिया गया। क्यों लिया गया? कुबजा का कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं भी उसका ध्यान नहीं है, भले ही काम के लोभ से हुआ, उसमें कुछ कामनाएं हैं ये बात ठीक है, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त किसी पर भी उनका चित्त कभी नहीं गया, एक सेकंड के लिए नहीं गया। कंस के यहां जाती थी, काम कर करके चली आती, किंतु कृष्ण को एक बार जब देख लिया उनका चित्त कभी नहीं दूसरे, इसलिए वो साधारणी नायिका के रूप में है। इसलिए कहते हैं एक बार यदि कृष्ण को कोई देख लिया दूसरे तरफ मैं नहीं जाता। सीता जी ने एक बार राम को देख लिया, बस संकल्प कर दिया यही हमारे पति और उनके पति हो गए। राम ने छोड़ भी दिया किंतु उन्होंने नहीं छोड़ा, ऐसा रूप गुण इत्यादि कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं ये भले ही सब कुछ आ जाए, सुंदर से सुंदर चीज आ जाए, सुंदर सुगंध आ जाएगी, किंतु कृष्ण को ये नहीं भूल सकते। तहां डुबाए आगे उठी धार, ये एक बिंदु भी यदि उसकी झलक भी है इस उच्च गिरी को, माने गोपियों के पतिव्रत धर्म को, उनकी लोक लज्जा को, उनकी धैर्य को, जो पहाड़ के समान है। कैसा धैर्य? तमाल वृक्षों को देख करके गोपियां कृष्ण के रूप में देख करके और बेबश हो जाती हैं, उसका आलिंगन करती हैं। उद्धव जी कृष्ण जैसा रूप उन्हीं का उमर, वैसे ही श्याम रूप, वैसे ही पीताम्बर, वैसे ही पहन गहन सब कुछ, अंगों से वही माला, वैसा ही सुगंधा, किंतु उनको देखा नहीं। ऐसी ये गोपियां हैं किंतु उस प्रेम का एक भी बिंदु यदि आ जाए, झलक कृष्ण का दर्शन, वो अपना शुद्ध बुद्ध खो जाती। ललिता जी मना कर रही, खबरदार आज उसे टेढ़ी बने रहना, कहे ठीक है तुम जैसी कहते वैसे ही करो, जही आए तो ऐसे बैठ जाना, ठीक है बातचीत तो नहीं करेगी, नहीं करेगी, उनके तरफ में देखेगी नहीं देखूंगी, हजार मनाने पर भी मत बोलना तो नहीं बोलेंगे। आज जहां कृष्ण आ गए, ललिता जी करें ऐसे खड़ी हैं, शासन कर रही, खबरदार उसके तरफ में मत देखें, और ये क्या कर रही हैं, आंखें कंसी से देखें, लग जाए मत खबरदार ऐसा मत करना, उसे बात मत करना। कृष्ण जब जाने गलते हैं वहां से, जो थोड़ा सा मन करने पर, ये उनसे बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ललिता जी कहते हैं देखो थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ी देर के बाद मैं एक सेकंड नहीं ठहर सकती, मुझे ये संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकती। ललिता जी हजार समझाते थक जाते हैं, किंतु एक मिनट में इनका धैर्य चूर्ण विचूर्ण हो जाता है। ऐसा ये कृष्ण के रूप में प्रभाव है, ऐसे ये पांचों में है। इसलिए कहते हैं कि डुबाए आगे उठी धाय, डुबा करके आगे उठी धाय माने क्या, ऐसे पर्वत को अपने अंक में समा लेता है और उसे पानी में डुबो करके क्या करता है, कृष्ण का रूप और ये सब चीजें उसके रग रग में समा जाता है। जैसे पहाड़ है, हिमालय पहाड़ में क्या क्या चीजें हैं, केवल पत्थर है, बाग है, बगीचा है, मट्टी है, पानी है, सरोवर है, पशु पक्षी कितने सब मिला करके एज ए गोवर्धन पर, वो हिमालय पर्वत एक ही कुछ केवल पत्थर ही पत्थर है ऐसा नहीं। और उसको यदि समस्त पर्वत को उठा लो और उस समुद्र में डाल दो तो क्या हो गया, पानी मट्टी जीती थी गल करके क्या हो जाएगी, वो सब मिट्टी मिल करके वो कीचड़ बन जाएगी। और उसके जहाँ जहाँ कोई भी छिद्र होगा, उसमें जितनी गुफाएं होंगी छिद्र होंगे, सब कुछ उसमें भर जाएगा, पानी 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 और कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं आगे उठे और भी आगे डुबाने के लिए तत्पर हो जाता है। अर्थात गोपियों के रोम रोम में, उनके भीतरी मन में उनका कुछ भी बाकी नहीं, कृष्णमय सब कुछ हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं कृष्णमयी हो जाती राधा, कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। इसलिए कृष्णमयी का भाव ये है। कहते हैं महाप्रभु जी राधा में विभावित होकर के सखी राय रामानंद को विशाखे, कृष्ण के अद्भुत इस रूप की शक्ति, रूप का प्रभाव, या पांचों विषयों का जो स्वभाव है, मैं क्या कहूं, उनमें इतनी मधुरता है कि अमृत की मधुरता भी वहां पर पराभूत है, पराजित हो जाती है। कृष्ण के अंगों में जो गंध है वो कैसी है, विश्व के सारे गंधों को मात कर देता है। एक चीज है किंतु जो इसका यहां नहीं वर्णन करते, ऐसे कृष्ण भी राधा जी के सौंदर्य सुगंध और इससे एकदम पराभूत हो जाते हैं, किंतु उसका भी वर्णन नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये राधा भाव में स्वयं आविष्ट है। इसलिए यदि ये कृष्ण सचमुच में होते ना, तो ये सब चीजों को भूल करके राधा जी का सबका ये वर्णन करके उसमें एकदम किंतु नहीं हो रहे, क्योंकि ये अभी राधा जी के भाव में। कृष्ण वचन माधुरी, इसी प्रकार से एक अभी तमन्न रूप का माधुरी कहा, अब उसके वचन की माधुरी कैसी है इसका हम लोग कल वर्णन परसों करेंगे। कल
राधा का निर्देश, जो प्रेम और पार्वती जी से बदलाते इसका भी वर्णन पाया गया है। भले ही एक रूप में वह ध्वंसकारी होने से तामसिक गुण को अंगीकार करेंगे, किंतु यह तामसिक या कोई भी राजसिक और सात्विक गुण उनको स्पष्ट नहीं करता। ये तत्वतः सदाशिव हैं, उनसे अतिरिक्त रहते हैं। जैसे विष्णु सत्वगुण का आश्रय लेकर के जगत का पालन करते हैं, किंतु सत्वगुण से प्रभावित नहीं होते, उससे अतीत है। वैसे शंकर जी भी भगवान के परम भक्त हैं, वे इन गुणों का स्पर्श नहीं कर उन गुणों के द्वारा इस कार्य को करा लेते हैं। कृष्ण के लीला क्षेत्र में भागवत में ऐसा वर्णन किया गया है, द्वारका में और उस समय उनके पुत्र निरुद्ध प्रद्युम्न जी या निरुद्ध कामदेव हैं और उनको हरण करके
प्रद्युम्न को हरण करके
सम्राट ले गए, सम्राट ले गया और वहां पर उनकी तरफ से शंकर जी लड़ने के लिए आते हैं। और पनासुर के युद्ध में और कृष्ण से उनका युद्ध होता है और कृष्ण उनको हरा देते हैं। ये शंकर जी उनके प्रतिकूल आचरण क्यों करते हैं? इसलिए वे इस रूप से कृष्ण की महिमा दिखलाते हैं, जैसे दुर्वासा जी भक्तों की महिमा चारों तरफ बढ़ाने के लिए अपनी हाथ अपना वो निंदा भी सज्ज कर देते भक्तों का, ये सब महत्व प्रकाश है। इसलिए शंकर जी उसी रूप में उनकी महिमा को बढ़ा रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान हैं, शंकर जी भगवान हैं, जैसे रावण है, कुंभकर्ण, मेघनाथ, जरासंध, कंस, जितने भी असुर हैं, भस्म असुर, जो जो उनको ईश्वर के रूप माना, स्वतंत्र ईश्वर के रूप में, उन सबकी ऐसी दुर्गति हुई। इसलिए शंकर को वैसे नहीं मान करके कृष्ण का अनुगामी और उनकी इच्छा को पालन करने वाले ये शंकर जी हैं, इस रूप में दर्शन करना चाहिए, तब उनकी पूजा हम कर सकते हैं। जब पौंड्रिक वासुदेव चार हाथ लगाकर और कृष्ण से संदेश भेजा, कृष्ण को संदेश भेजा, तुम चार हाथ हटा लो और नहीं तो तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो, मैं युद्ध भूमि में तुम्हारे हाथों को काट दूंगा। उस समय में कृष्ण हंसने लगे और जब पंतों के यादव लोग हंसने लगे और कृष्ण ने कहा जैसे तो ठीक है, संग्राम ही दिखलाएगा जो कैसे ये चतुर्भुज और युद्ध हुआ। उसमें उसका मित्र ये शंकर भी उपस्थित थे, तो ये विरोधी उसका भी ये समझ देते हैं, आराम का विरोधी राम उसका भी समझ देते हैं। ये किस लिए? वो संहारकारी शक्ति है ना कृष्ण की, इसलिए यदि वैसा नहीं करेंगे तो इनका संहार नहीं होगा, इसलिए ऐसा करा देते। मल मोहताज उनके विरोधी हैं, किंतु विरोधी नहीं, जैसे भीष्म पितामह पांडवों के विरोधी नहीं थे, वो केवल उन लोगों का संहार कराने के लिए यदि वो इनका पक्ष नहीं ग्रहण करते तो वो युद्ध ही नहीं होता, क्योंकि युद्ध का सब कुछ ये प्रेरणा ये उनसे थी, भीष्म पितामह। वो यदि नहीं युद्ध करते हैं तो ये महाभारत युद्ध नहीं होगा और तब फिर सबका ध्वंस होगा नहीं। इसलिए जानबूझ करके भीष्म पितामह ने भगवान की प्रीति के लिए उनका संहार कराने के लिए उनका पक्ष ऊपर से दिखलाया, किंतु सब समय ही वो चाहते थे कि पांडवों की विजय हो। जब पहले महाभारत युद्ध आरंभ हुआ तो उन्होंने अर्जुन युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम किया बाण से, बाण मार के उनके चरणों में, तुम्हारी विजय हो और यदि ऐसा नहीं करता तो तुम लोगों का युद्ध में पराजय होना। लेकिन सब समय उनसे किसी न किसी रूप में अपने मरने का कारण बतला करके और वैसा ही अपने आप जान बुझ करके मरे। उससे शंकर जी जान बुझ करके भी उनके प्रतिपक्ष में योगदान करके और उनको उत्साहित करके और कृष्ण से लड़ते हैं और हारते भी हैं, आज जैसा करते हैं और भी उनका ध्यान कराते हैं। इसलिए ये शंकर जी भगवान के बड़े, जो और दूसरे काम नहीं कर सकते, मायावाद का प्रचार दूसरा नहीं कर सकता कृष्ण भक्ति के थ्रू, किंतु भगवान के आदेश से वो ऐसा भी कर सकते। प्रचंड बौद्ध का उन्होंने प्रचार किया तो काशी नरेश के युद्ध में उन्होंने उनके तरफ से लड़ा, काशी राज को उन्होंने मारा, उसका बेटा आया उनके पौंड्रिक को मारा, काशी नरेश को मारा, उसका बेटा लड़ने के उसको भी मारा और काशी को जला। शंकर जी वहां से ये दिखलाया, देखो मैं जिसको तुम लोग ईश्वर कहता है मैं भी उनसे हार करके यहां से भाग जा रहा हूं, काशी को छोड़ रहा हूं, काशी मेरी जला दी उन्होंने, इसलिए कभी भी उसने तुम लोग चिंता करो, मुझे स्वतंत्र ईश्वर नहीं मान करके उनका परम भक्त समझ। और भी शंकर के ऐसे चरित्र हैं और कौन भस्मासुर में भी ऐसे ही भस्मासुर उनको स्वतंत्र ईश्वर मानकर और उनकी पूजा करके उनसे बर लिया और बर लेकर के उन्हीं की परीक्षा करने गया। अंत में भगवान ने आकर के पटु रूप धारण कर कहा कि तुम किसको कहां किसको खोज रहा है, ये शंकर किस लिए बर दिया है, मैं परीक्षा करूंगा उसके सिर पर हाथ देकर जलता है कि नहीं, उसके मनोभाव को भगवान समझ गया और कहा जिसे तुम ऐसे बेवकूफ हो, अरे उसकी बात कभी सच होती है, तुम अपनी हाथ देकर के देख लो तो अपने सिर पर है अपने हाथ से और जिन्होंने हाथ दिया बस। यहाँ पर भी उन्होंने यही देख लाया कि हमारे प्रभु कृष्ण भगवान
रावण को भी बोल दिया कम से कम,
इस तरह से सभी भगवान की लीला पुष्टि के लिए उन्होंने इस प्रकार से किए। इसलिए शंकर को इसी रूप में सब समय देखा जाए, दूसरे रूप में नहीं, सब समय भगवान के भक्त हैं। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी तवावली में इसका वर्णन किया है, गोपियां जिनसे भर पा करके और कृष्ण में वैसा अनुराग प्राप्त कर। इसलिए सनातन गोस्वामी ने रामानुज इत्यादि का विचार दे करके उन्होंने हरिभक्ति बलास में दिया कि रामानुज संप्रदाय के लोग दक्ष का वह बर वह विषमपात जानकर शंकर के प्रति जो तुम्हारी उपासना करेगा वो पाषंड होगा, और भिगु ने भी ऐसा ये दिया, इसलिए रामानुज के लोग ऐसे हैं, रामानुज का स्ट्रिक्ट आदेश है यदि तुम्हारे घर में आग भी लग जाए और पास में शिव मंदिर है तो मत जाओ वहां, जल करके मर जाना अच्छा है किंतु शिव मंदिर में मर नहीं जाना है, शिव जी का प्रसाद नहीं लेना है, उनका भस्म लेना नहीं है, ये भक्ति का विरोधी है। इसलिए रामानुज वाले नहीं जाते। एक बार रामानुज को जगन्नाथ जी ने वहां से उठाकर फेंक दिया सैकड़ों मील दूर। वो जगन्नाथ जी के मंदिर के पुजारियों को पान की बातें हुए देखकर और आचारहीन समझकर उनको सेवा बंद कर दिया। जो आप लोग कोई भी यहाँ जगन्नाथपुरी का कोई भी ब्राह्मण उनकी पूजा नहीं करेगा, उनमें सदाचार नहीं है। तो वो लोग उपवास रह करके धारणा दे दिया जगन्नाथ जी, प्रभु हमारी रोजी रोटी ये छीन लिया, अब हम भूखों आपके हैं मरे। तराती रात में जगन्नाथ जी ने उनकी खाट समेत पलंग समेत उठाकर मिलो दूर फेंक दिया। तब वो चले गए वहां पर, फेंक दिया कहां,
कुर्माचल।
वहां गए तो देखा जिस शिव की वहां पर पूजा, शिव जी का मंदिर है। तो उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु हमको फेंका भी तो हमको शिव के मंदिर में फेंका, इसे तो मेरा मर जाना अच्छा था। आकाशवाणी हुई कि जाकर के देखो ये मैं कुर्म रूप हूँ, शंकर जी का ये शिवलिंग नहीं है। तो जाकर के उन्होंने देखा, देखा अरे ये तो शिवलिंग नहीं, ये तो भगवान कुर्मदेव की मूर्ति है। और तब से वह कुर्म मंदिर के रूप में वो प्रसिद्ध हुआ। किंतु गौड़ीय वैष्णवों का क्या है, वो कहते हैं कि शंकर परम भक्त हैं, वैष्णवानां यथा संभो, इसे इनका सदा आदर करना चाहिए। इसलिए कोई कोई वैष्णव आयकंतकता के भय से शंकर की उपासना नहीं करते। इसलिए शिव चतुर्दशी के दिन वो कोई कोई नहीं भी करते हैं, किंतु हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि कोई करे और न करे, किंतु उनकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। अवज्ञा करके कहता है जिससे भक्ति की हानि होगी, इसलिए शंकर की पूजा नहीं करेंगे, नहीं तो हम पाषंड हो जाएंगे। तो सचमुच में वो पाषंड हो जाएगा नहीं करने से। इसलिए सनातन गोस्वामी ने क्या किया, रूप गोस्वामी ने क्या किया, हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या किया, हमारे गोस्वामी लोगों ने क्या किया, इस चीज को देखने के लिए विशेष करके हरिभक्ति विलास को लिखने वाले सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया। जहाँ भी वो ब्रज में रहते थे, वृंदावन में रहते, सब समय गोपेश्वर महादेव के पास। फिर गुरुराज गोवर्धन में रहते तो चकलेश्वर, काम्य वन में रहते तो कामेश्वर। इस तरह से जहाँ भी रहते शंकर के बिना वो नहीं रहते, उनसे बड़ी प्रीति थी। इसलिए उन्होंने लिखा कि अवश्य एव कर्तव्य, शंकर जी के लिए उपवास करना उनके लिए जो प्रेम चाहते हैं उनके लिए आवश्यक। ऐच्छिक राष्ट्र ले करके भी अंत में अपनी टीका में ये लिखा ने उनका कहना क्या, क्योंकि शंकर जी पार्वती जी को, नारद जी को या संत कृष्ण की गोपरीय जो लीलाएं हैं उनका उन्होंने उनसे वर्णन किया है। यदि वो नहीं जानते इस तत्व को और नहीं दे सकते तो वैष्णव लोग क्यों उनको इस प्रकार से, जो सनातन गोस्वामी ने इसीलिए, रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसीलिए। इसलिए वैष्णव लोग शंकर के बाह्य रूप की उपासना न करके आंतरिक उनका जो स्वरूप है उनकी प्रति आदर करें, कभी भी अवज्ञा न हो। उस दिन दूसरे दिन रघुनाथ दास गोस्वामी का तीनों का शिवभाव, रघुनाथ दास गोस्वामी का था बसंत पंचमी के दिन जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी का। जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज का क्या परिचय है, हम लोगों के लोकनाथ दास गोस्वामी, इसके बाद में नरोत्तम ठाकुर और उसी की परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी आए। विश्वनाथ जी की परंपरा में उद्धव दास, बलदेव विद्याभूषण आए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ही एक शिष्य थे, वो उद्धव दास या उद्धव दास, वो उनके जूनियर थे बलदेव जी। इन दोनों को ही उन्होंने भेजा था गलता की गलती में, उसमें तत्व का विचार हुआ और उन्होंने रामानंदी संप्रदाय के साधुओं को, निम्बार्क संप्रदाय के साधुओं को, सबको परास्त किया और उनकी विजय हुई और उसी में ब्रह्मसूत्र का गोविंद भाष्य उन्होंने प्रकाश किया। इसलिए उनके प्रेरणा देकर के कराया था वो, इसलिए उनका नाम, उसका नाम हुआ गोविंद भाष्य, गोविंद ने जो भाष्य किया। जैसे मदन मोहन लिखाए मोरे हाथे धरी लिखाए, ये चैतन्य चेतामृत के लिए कह रहे हैं कि हाथ पकड़ करके हमारा और ये चैतन्य चेतामृत को हमसे लिखवा रहे हैं मदन मोहन, तो ये बात झूठ है कि सच है? सच है। उसी तरह से बलदेव विद्याभूषण का हाथ पकड़ करके गोविंद जी ने लिखवाया और गोविंद की महिमा उससे प्रकाशित हुई, इसलिए उनको गोविंद भाष्य कहते हैं। तो इनके साथ में वो भी गए थे, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के वो शिष्य गए थे। तो गुरु परंपरा में भागवत परंपरा और शिष्य परंपरा अर्थात पंचरात्रि शिष्य परंपरा, ये दोनों दिखाई जाती है। किंतु हमारे गुरु महाराज जी ने कहा या हमारे प्रभुपाद जी का भक्ति सिद्धांत सरस्वती का यह विचार था, पंचरात्रि दीक्षा परंपरा ऊपर की है, इसको फूल बुद्धि वाले बहुत अधिक महत्व देते हैं और सूक्ष्म बुद्धि वाले वो लोग भागवत परंपरा पर अधिक जोर देते हैं। भागवत परंपरा में दीक्षा के दिव्य ज्ञान के साथ साथ में हमारी उपासना की जो पद्धति है उसकी वो शिक्षा मिलती है, केवल शिष्य परंपरा में वो नहीं संभव पर नहीं। जिस गुरु को चैतन्य महाप्रभु जी के विचारधारा को ही पता नहीं है, कुछ आए हैं मंत्र ले लिया उनसे कोई शिक्षा नहीं ली, तो ऐसा जो गुरु है अपने शिष्य को ये सब चीजें नहीं दे सकता। ये केवल भागवत परंपरा में, भागवत का परंपरा मैंने क्या, कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ में जो लीलाएं की, ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, ब्रजवासियों में से सुबल सिद्धाम इत्यादि का कृष्ण के प्रति जो सख्य भाव था, जो यशोदा मैया नंद बाबा का जो वात्सल्य भाव था, गोपियों का कृष्ण के प्रति मधुर भाव, प्रियतम का जो भाव था, उसका स्मरण चिंतन और अनुशीलन ये भागवत परंपरा है। उस परंपरा को निभाने के लिए प्रारंभिक रूप में शिक्षा इत्यादि की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षा परंपरा की श्रेष्ठता होती, बाह्य अनुष्ठान की, यज्ञ कर दिया, कान में मंत्र दे दिया, हो गया, और जो नहीं करेगा उसको ये परंपरा नहीं आएगी, यदि ऐसी बात होती तो राय रामानंद कौन से परंपरा में थे, माधवेंद्र पुरी से उनका क्या संपर्क था, ठाकुर संपर्क, स्वरूप दामोदर का उनसे क्या संबंध था, उस परंपरा से क्या लेना देना था, वो तो मक्काशी में मायावादी एक सन्यासी से उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया था, उनसे दीक्षा और सन्यास की बात। तो दीक्षा की परंपरा में शिष्य परंपरा में नहीं आ सकते, तो फिर उनको भक्ति नहीं होनी चाहिए थी। किंतु महाप्रभु के जितने अंतरंग है उसमें स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद ये दो प्रधान है और दोनों हमारी शिष्य परंपरा में नहीं है किंतु भागवत परंपरा में है। शिष्य परंपरा किसके वो शिष्य हैं, महाप्रभु जिनके शिष्य हैं उनमें से किसी के एक साथ में उनका संबंध है दीक्षा इत्यादि का, राय रामानंद जी का कुछ भी नहीं मालूम होता है। यही तो पता ही नहीं, किंतु भागवत परंपरा में है। ये कैसे आएंगे, महाप्रभु के बाद में, महाप्रभु के शिष्य में स्वरूप दामोदर राय रामानंद, फिर उनके बाद में आएंगे ये भागवत परंपरा। महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी को दीक्षा नहीं दी। दीक्षित तो किसी के थे जो उसका कहीं उल्लेख ही नहीं मिलता है। नवदीप के किसी भट्टाचार्य वैष्णव थे सुनते सुनते। इसलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने किसी को लाया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण और उसके बाद में उद्धव दास और मधुसूदन बाबा जी, और उसके बाद में लिया भक्ति विनोद ठाकुर को जगन्नाथ दास बाबा जी, और जगन्नाथ जी के बाद में भक्ति विनोद ठाकुर को। यहाँ पर अधिकांश लोगों का दीक्षा का संबंध नहीं है, किंतु प्रधान यही है इसी को समझने से, जिससे ये पद्धति मिलती है, जिससे कि उस वृंदावन के राज्य में पहुंचा जाता है। केवल कोई गुरु को कुछ ज्ञान ही नहीं है इस तत्व का। बहुत से ऐसे गुरु हैं जिनको भक्ति से कोई संबंध नहीं, ऊपर से दीक्षा ले लिया, वो भी करते हैं मंत्र की नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, और उनका ऊपर परंपरा में कोई आकर के उसे कैसे वो पा सकता है, किंतु भागवत परंपरा में वो आ सकता है यदि कोई योग्य हो तो उसमें आ जाए। जैसे मध्वाचार्य व्यास जी की परंपरा में समय का कोई, काल का कोई भी अंतर नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे गुरु व्यास जी। इसी तरह से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इसी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ये परंपरा में बलदेव भूषण के बाद में इनको किया गया। यद्यपि उनके गुरु थे हाँ श्यामानंद प्रभु के शिष्य परंपरा में रसिकानंद जी के शिष्य काश वहां पर जगन्नाथपुरी में दामोदर दास थे, उसे उन्होंने दीक्षा ली, किंतु इसका वर्णन उन्होंने कहीं अपने गुरु परंपरा में या कहीं भी नहीं किया, बल्कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को उन्होंने अपने बलदेव विद्याभूषण ने लिया। पूर्व गुरु का वो कोई परिचय नहीं, और ऐसा परिचय मिलता है इसलिए हम लोग कह देते हैं, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती को सब अंतर्भाव से उनको गुरु के रूप में ग्रहण किया, और उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको उन्होंने धारण किया। असल में यही जिनकी हम शिक्षाओं को संपूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं और अपने जीवन चरित्र में मानते हैं, हृदय अपने आप उसके प्रति अनुरक्त हो जाता है, यही है श्री सत्य यथार्थ, यही भागवत परंपरा है। ये भागवत परंपरा ऐसी चीज है जो दीक्षा परंपरा वाली जो शिष्य परंपरा है उसको क्रोड़ीभूत करके रखता है, उसका अनादर नहीं करता, उसका आदर करते हुए यथाजोग्य सम्मान देते हुए, और ये चलता है भागवत पर। इस तरह से बलदेव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हम लोगों की, विश्वनाथ लोकनाथ चैतन्य महाप्रभु और उसके बाद में रूप सनातन, उसी को समझ लीजिए रूप, लोकनाथ गोस्वामी, उनसे नरोत्तम ठाकुर जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और बाद में बलदेव विद्याभूषण, और उन्हीं की परंपरा में एक जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य परंपरा में नहीं है, शिष्य नहीं है, पंचरात्र की दीक्षा उनसे नहीं दी। पंचरात्र की दीक्षा में क्या किसी को थोड़ा सा समझो, बहुत ही ज्ञान गर्भ चीज है, तत्व होने की है। हमारे ये बक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य गोपाल गुरु और उनके शिष्य ध्यानचंद, उन्होंने दो प्रकार की पद्धति लिखी, जिसमें स्वरूप दामोदर राय रामानंद और उनकी परंपरा में स्वरूप दामोदर, उनके बाद में रूप सनातन, उनकी परंपरा में जो चीजें आ रही है, इसमें श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन अर्चन बंदन दास साक्षात्कार निवेदन, और उसमें भी पांच चीजें छात्र संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वासी मुत्ते श्रद्धाय सेवन सकल साधन यही पंचम, ये पांच अंग प्रधान है। यदि कोई थोड़ा सा भी इसका पालन करे, साधु संघ नाम कीर्तन, श्रीमद भागवत श्रवण और मथुरा भाषित की मूर्ति की। किंतु इसमें प्रधान क्या है? साधु संघ। साधु संघ में नाम, साधु संघ में भागवत श्रवण, साधु संघ में मथुरा वास, साधु संघ में ही उसी में वो प्रधान। वो है बाहरी अंग के अनुष्ठान, अर्चन पद्धति, पंचरात्रि विधान, मंदिर की स्थापना, उसमें से विग्रह की स्थापना, उनका घंटा लेकर के विधि के साथ। यदि कोई इसी में लग जाए विधि पूर्वक अर्चन में, तो न जाने कितने जन्म बीत जाएंगे, उससे चित्त शोधन भी नहीं होता है, उससे नहीं होता है, किंतु साधु संघ नहीं हो जाएगा। इसलिए हमारे गोस्वामी ने अर्चन की तरफ में जो मध्यमाधिकारी हैं, कम से कम उनको इस धर्म में नहीं झुकने देने का परामर्श दिया। कले और कनिष्ठ अधिकारी उसको कर करके अपने चित्त को शोधन कर करके नियम पूर्वक उसमें लगे, तब होते 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 तो साधु संघ में सबसे ये चीजें आएंगी। इसलिए दो पद्धति उन्होंने की, एक हुआ गुरु का मंत्र, गौरांग का मंत्र, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, फिर कृष्ण का मंत्र, राधा जी का मंत्र, अष्ट सखियों के मंत्र, गिरिराज जी का मंत्र, यमुना जी का मंत्र, जितने कृष्ण के परिकर परिकार गाए हैं उन सब का अलग अलग मंत्र देकर के उनके पूजन की बुद्धि बनाई। ऐसी विधि बन जाए सारा दिन भी पूजा करेंगे तो समाप्त नहीं। कहते आपके गुरु जी ने राधा जी का मंत्र दिया है, इसमें राधा जी का काम। लोग कहते हैं कि इसलिए हमको राधा जी का मंत्र दीजिए, राधा जी की गायत्री दीजिए, राधा गायत्री, राधा जी का मंत्र। फिर विशाखा का मंत्र दिया गया है, ललिता जी का मंत्र, ये सब उसमें है। किसमें? अरे उसमें अभी जो बता ध्यानचंद और गोपाल गुरु जी की पद्धति में। किंतु ये क्या चीजें हैं, उसके चित्त को किसी प्रकार से मोड़ करके ढक लिया जाए, इसके लिए उसमें कृष्ण के स्मरण लीला में मंत्र की आवश्यकता उतनी है कि नहीं, अष्टकाली लीला में मंत्र कहाँ है? कोई कहीं भी कोई मंत्र नहीं, एकदम स्मरण कर एक पर एक दूसरी बात लगातार कंटिन्यूएशन में माला के रूप में वो लीलाएं आती जा रही। बल्कि मंत्र करने से होगा क्या, कृष्ण के लिए नमस्कार, ओम कृष्णाय स्वाहा, स्वयं कृष्णाय स्वाहा, तो कृष्ण के प्रति स्वाहा भी कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, तो अभी कृष्ण के प्रति वो नरलीला की भावना के अनुरूप में भावना कहां से आएगी? यह तो ऐश्वर्य का भाव हो गया, इसलिए ऐश्वर्य भाव लाने वाला है। जहां मंत्र है वो ऐश्वर्य भाव हो, अपने को बहुत सूक्ष्म मान करके, एक बद्ध जी मान करके उनका अर्चन करते हैं। और उसमें या तो कृष्ण के बराबर नहीं, कृष्ण से बड़े भक्त लोग रहते हैं, जो यशोदा जी उन कृष्ण को प्रणाम करके उनकी सेवा करेंगी, ये कभी संभव नहीं। बल्कि कृष्ण प्रणाम करें, कृष्ण भी प्रणाम नहीं करता, वो दौड़ता हुआ हंसता हुआ करके गोदी में गिर जाएगा, बस यही उसका प्रणाम। आज यशोदा जी स्तन प्रणाम पान कराकर कृष्ण के उलझे हुए बालों को सुलझाएंगी, मस्तक चूमेंगी और प्यार करते ही आंखों से दो आंसू टपका देंगी। ये पर ब्रह्म उस कोटि कोटि प्रणामों से भी अधिक उनके प्रति आकृष्ट हो जाएगा। इसलिए अष्टकाली लीला में मंत्र का कोई भी कहीं भी कोई उल्लेख नहीं तो वो भाव खत्म हो जाएगा, ऐश्वर्य बुद्धि आ जाएगी और फिर उसे क्या होगा, ऐश्वर्य सुशीले प्रेम शिथिल प्रेम नहीं, ऐश्वर्य के द्वारा जो प्रेम शिथिल हो जाता है। इसलिए अर्चन की प्रधानता उन्होंने साधारण लोगों के लिए कहा, एकदम जितने भी हैं सबके यमुना जी का मंत्र, राधा जी का, ललिता, विशाखा, चित्रा, राधा जी का भी, कृष्ण का भी, गुरु का मंत्र, गायत्री मंत्र, महाप्रभु जी का मंत्र, माने जितने लाखों मंत्र हैं, चित्त संजो करके करते करते मस्तिष्क हो जाएगा। इसलिए भागवत परंपरा पहले के पहले ये यदि ये कर लें, यदि कोई करता है ठीक है, किंतु यदि साधु संग हो जाए तो फिर इनकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो भागवत परंपरा में आकर के उस लीला स्मरण में, भागवत में गोपियों का या ब्रजवासियों का कहीं कृष्ण के प्रति कोई प्रणाम मंत्र है? यशोदा ने विश्वरूप भी देखा किंतु प्रणाम तो नहीं किया। उन्होंने सोचा ये कोई जानी का काम है, किसी की नजर लग गई थी क्या जाए। इसलिए एक तो अर्चन पद्धति है, किसी को कहते हैं पांचरात्रिक विग्रह के लिए, उन्होंने बतलाया सनातन गोस्वामी ने, उन्होंने शालग्राम शिला को ही भगवान मान लिया और बक्से में बंद करके ब्राह्मण उनको पूजा करने के बाद में ले गया तो हाय हाय करने, अरे हमारे ठाकुर जी को ये बक्से में बंद करें, उनको गर्मी लग रही होगी, बड़ी भूख लगी होगी। अब इसके बाद में फिर उन्मुक्त रूप में उनको देखा, वहाँ दक्षिण प्रदेश में त्रिवंडन में देखा, जब वो उचित 10 बार अर्चन पूजन और भोजन इत्यादि दिया जा रहा है और वो राज्य ही उनका है, बक्से में बंद नहीं होते, किंतु देखा जी संध्या के बाद उनका कवाट बंद हो जाता है, बड़े दुखी हो गए, उनसे तृप्ति नहीं हुई उस अर्चन से। इसके बाद में तो फिर कहाँ गए, जगन्नाथ जी ने, जगन्नाथ जी को देख करके बड़े प्रसन्न भए, यहाँ पर जूठा फूटा का कोई चीज का विचार नहीं है, और सोचा जी प्रभु मैं आपका सेवक बन जाऊं, राजा मर गया कुछ दिनों के बाद में, इन्हीं को राजा घोषित कर दिया और पूजा करने लगे। कुछ दिन करते 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 इनका मन भर गया, जब तो वो पूजा करने में भी त्रुटि देखने लगे, क्या रोज जो दुस्तव होता है कृष्ण के लिए विरह नहीं आता,